तफसीर तिलावत आपने सुनी और सूरत अल हुजरात आयत नंबर 11 से लेकर 13 तक। यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो कौन सी बुराइयां हैं जिससे मुआशरे में ताल्लुकात खराब होते हैं और आपस में जो है वो लड़ाई झगड़ा होता है। पिछली आयतों में आपने पढ़ा कि मुसलमानों की वहां अगर लड़ाई हो जाए तो मुसलमानों को एहसास दिलाया गया कि उनका रिश्ता इतना खूबसूरत है और इतना मजबूत है जो ईमान का रिश्ता, कि इन्नमल मुमिनूना इख्वातुन। तो क्या करना चाहिए कि एक तरफ मुसलमानों को आपस में लड़ते हुए ताल्लुकात ठीक कर लेने चाहिए और दूसरे जो लोग हैं उनको भी ताल्लुकात ठीक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उनकी सुलह करवानी चाहिए। और अब आगे बताया जा रहा है कि वो कौन से असबाब हैं, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से उयूब हैं जो कि मुसलमानों के जो ताल्लुकात हैं उनको खराब करते हैं और फसाद की और लड़ाई की आग को भड़काते हैं। पीछे तो कहा ना लड़ाई ना करो, आगे बताया जा रहा है कि लड़ाई की वजूहात क्या होती हैं, लड़ाइयां कैसे वजूद में आती हैं। क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। फिर आप देखिए कि किसको बुलाया जा रहा है, किसको पुकारा जा रहा है, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। कहाँ हो वो लोगो जिन्होंने ईमान लाने का दावा किया है? क्या जिन्होंने अपना नाम जो है वो रख लिया है सलमा और उसके बाद जो है वो मोमिना? बाज लोग ईमान नाम बहुत रखते हैं, कहते हैं इसका बहुत फैशन हो गया है, बाज कहते हैं बरका का बहुत फैशन है, बाज कहते हैं नहीं अब तो वो जो साहब और साहबियात के नाम थे उनका बड़ा फैशन हो गया। तो बात फैशन की नहीं है, बात किसकी है कि ईमान जो है वो दिल के अंदर है कि नहीं। तो ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अब आप जरा गिनती जाइएगा कि वो कौन सी चीजें हैं जिनसे अल्लाह ताला मना कर रहे हैं। क्या फरमाया, नंबर एक, ला यसखर कौमुन, के ना तमस्खुर करे कोई कौम, मिन कौमिन, किसी कौम से। और अब यहाँ पे इससे मुराद क्या है कि कौम जो है जैसे एक मजमूए और एक ग्रोह को कहा जाता है, तो यहाँ कौन मुराद है कि मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं, उनका तमस्खर नहीं करें। और आप ये भी देख लें कि मजाक उड़ाना, तो कुरान मजीद में मजाक उड़ाने के लिए इस्तेहजा भी आया है और सखारा भी आया है ना? इस्तेहजा भी है और सखारा भी है। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, सखारा। सखारा के मानी क्या होते हैं? सखारा के मानी होते हैं, असल में इसमें जिल्लत और हकारत का पहलू पाया जाता है, और सखारा के मानी होते हैं किसी को जलील करना, किसी को मगलूब करना, किसी का ऐब बयान करके इसका मजाक उड़ाना। और जब ऐब बयान किया जा रहा हो तो मकसूद उसकी जो है वो तहकीर और तजलील। तो क्या है कि किसी का ऐब बयान करके अजराहे हकारत जो है वो उसका मजाक उड़ाना। क्या कहा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना मजाक उड़ाए कोई मर्द, मिन कौमिन, किसी दूसरे मर्द का। तो इससे मुराद एक मर्द भी हो सकता है और इससे मुराद जो है वो बहुत से मर्द भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से मर्दों का जो मजमुआ होता है वही जो है वो एक कौम होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पे मना किया जा रहा है एक कौम को दूसरी कौम का मजाक उड़ाने से, और इसका तर्जमा करने वालों ने तर्जमा मर्द भी किया है। क्यों तमर्द किया है, आगे आप जानेंगी इसी आयत में। इसके साथ ही फरमाया, असा यकूनु खैरम मिनहुम। असा का मानी जो है ये लाला के मानी देता है, करीब है, मुमकिन है, शायद। तर्जमा है, करीब है, मुमकिन है यकूनु के वो हों खैरम मिनहुम, बेहतर इनसे। हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो, तो क्यों है मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाते हैं? फिर پھر فرمایا ولا نساء من نسائن، اور نہ عورتیں عورتوں کا، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، اسا یکن خیر منہن، کہ وہ ہوں بہتر ان سے، کہ جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہی ہوں. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ مذاق اڑانا اور تمسخر اڑانا کسے کہتے ہیں، کہ ٹھٹھا نہیں کرنا، مذاق نہیں اڑانا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کے عیب کی وجہ سے اس کو ذلیل نہیں کرنا. دوسری بات یہ کہ مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے مفسرین اس کے کیا معنی بتاتے ہیں. ایک اس کے معنی تو یہ ہیں کہ اسلام ایسی سوسائٹی کا تصور بھی نہیں کرتا جس میں لوگ مرد اور عورتیں ملے جلے رہ رہے ہوں، بے تکلف محفلیں ہوں، اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کریں، دل لگی کریں، ٹھٹھا کریں، اور جو ہے وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ جملے کسیں. ٹھیک ہے، تو اسلام تصور بھی نہیں کرتا، اس نے گنجائش ہی نہیں رکھی کہ غیر مرد اور عورتیں کسی محفل میں جمع ہو کر آپس میں مذاق کر رہی ہیں، ہنسی کر رہی ہیں. قابل نہ تصور ہے، یہ بات تصور نہیں ہے اس بات کا. اس لیے پہلے مردوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عورتوں کا ذکر کیا. تو آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمارے لیے کیسی سوسائٹی جو ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر، دنیا کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے رہیں. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں لوگ نا کہ منع کیا گیا ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں اور عورتیں مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہیں اڑائیں گے اور عورتیں عورتوں کا نہیں، لیکن مرد عورتیں آپس میں مذاق اڑا سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ اس کا یہ غلط معنی بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو کیا بتایا کہ آپس میں مذاق نہیں اڑانا. اچھا، اب جو ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق اڑاتا کیوں ہے، وہ استہزاء کیوں کرتا ہے، تمسخر کرتا کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کمتر سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ بہتر کون ہے اور کمتر کون ہے، یہ اللہ جانتا ہے. کیونکہ دونوں جگہ یہ فرمایا، پہلے کہا مردوں کا ذکر کرتے ہوئے اَن يَكُونُ خَيْرًا مِنْهُمْ، پھر عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا اَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ. تو يَكُونُ مذکر کا صیغہ ہے، يَكُنَّ مؤنث کا، اور منہم مذکر کے لیے ہم آیا ہے، اور یہاں پہ من ہننا ہم کا جو مؤنث ہے وہ ہننا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے. تو منع کر دیا گیا کہ ایمان اور عمل کا فیصلہ تو اللہ کرے گا، تم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ تم ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگے. اچھا، پھر یہیں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے مذاق کس طرح اڑایا جاتا ہے، جب انسان دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں تو کیسے مذاق اڑاتے ہیں. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کسی شخص کی تحقیر اور توہین کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا کہ جس سے لوگ ہنسنے لگے، اس کو تمسخر کہتے ہیں. اور تمسخر جو ہے اس کے معنی محض زبان سے مذاق اڑانا نہیں ہے. اور کیسے ہے پھر تمسخر، اور کیسے کیا جاتا ہے؟ زبان سے بھی کیا جاتا ہے تمسخر، اس کے علاوہ ہاتھ اور پاؤں سے بھی. ہاتھ پاؤں سے کیسے مذاق اڑائیں گے؟ مثلا کسی کی طرف اشارے کرنا، اور اس کی نقل اتارنا، اور اس کی بات سن کر حقارت کے طور پر اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دینا. اور کیسے؟ جیسے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے سامنے اس کا ذکر اس طرح سے کرنا کہ اس طرح سے हकारत के साथ या मजाक उड़ाते हुए कि जूं ही जिक्र किया तो उसके साथ बाकी लोग जो हैं उसका जिक्र सुनते हुए जो हैं वो क्या करें, हंस पड़े। तो ये सारी चीजें जो हैं ये किस में आती हैं, ये चीजें जो हैं वो मजाक उड़ाने में आती हैं। अच्छा, अब आप जो हैं ये बात भी देखें कि जैसे बाज लोग जो हैं आम जिंदगी में एक दूसरे का जब मजाक उड़ाते हैं तो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं ना कि मैं तो ऐसे हंसी कर रही थी, मैं तो दिल लगी कर रही थी, मैं तो बस मजाक उड़ा रही थी। जब मजाक उड़ाते हैं तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, और अगर कोई मजाक उड़ाने का बुरा मान ले तो उसको कहते हैं लो जी उसका कितना छोटा सा दिल है, लो जी वो तो बिल्कुल ही जो है वो छुई मुई है, बस मजाक ही उड़ाया था, बस इतनी सी मैंने बात कही और देखे जी उसने बात का पतंगड़ बना दिया। तो ये जो मजाक उड़ाना है ना, किसी का भी मजाक उड़ाना, ये क्या है, ये अल्लाह ताला ने इससे मना किया है। और असल ममानियत जिस चीज की है वो ये है कि किसी का इस तरह से मजाक उड़ाया जाए कि जिसमें अपनी बड़ाई का तसव्वुर हो और दूसरे की हकारत का, और उसके साथ क्या है कि उस शख्स की दिल आजारी हो, और ये चीज जो है ना ये हराम है कि किसी का जो है वो दिल दुखाया जाए। और इस्लाम जो है ये पसंद नहीं करता कि दूसरों का दिल दुखाया जाए। फिर आप देखें कि इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस जो है वो हमारी किस तरह रहनुमाई करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमस्खुर करने से जो है वो मना किया, क्योंकि ये जबान की बुराइयों में से एक बहुत बड़ी बुराई है जो एक भाई को दूसरे भाई से जुदा कर देती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो आखरत में मजाक उड़ाने वाले के अंजाम की बड़ी इबरतनाक तस्वीर खींची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों का मजाक उड़ाने वाले हर फर्द के लिए कयामत के दिन जन्नत का एक दरवाजा खोला जाएगा और उसे कहा जाएगा तशरीफ लाइए। वो गम के साथ आएगा और जैसे ही दरवाजे तक पहुंचेगा इस पर दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर इस पर दूसरा दरवाजा खोला जाएगा कि आइए आइए, तो वो अपने मसाइब और अलम के साथ आएगा, जो ही वो करीब पहुंचेगा दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा यहां तक कि जब किसी के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा और वो कहा जाएगा कि आओ, तो मायूसी की वजह से वहां आने और दाखिल होने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तमस्खुर की एक शक्ल ये है कि दूसरे इंसान के जो अयूब हैं उनकी नकल उतारी जाए। एक दफा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने किसी की नकल उतारी तो आपने नापसंद किया और फरमाया मा अहबू अनहुलियत अहदुन व इनकान अली कजा व कजा। ये मिशकात की रवायत है कि मैं किसी की नकल उतारना पसंद नहीं करता। मबू अनहुली तू अहदुन व इनकान अली कजा व कजा, अगरचे मुझे ये और ये दे दिया जाए, यानी कोई दुनिया की बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी चीज ही क्यों ना दी जाए तो मैं उसकी नकल उतारना जो है वो उसको पसंद नहीं करता। फिर आप ये बात भी देखें कि आम तौर पे जब मजाक उड़ाया जाता है तो उसकी वजह क्या होती है कि इंसान अपने आप को उससे बरतर समझता है और दूसरे को जो है वो हकीर समझता है ना। और इस सिलसिले में जो है वो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की का कौल है कि अगर मैं कुत्ते के साथ भी इस्तेहजा करूं तो मुझे ये डर होता है कि मैं खुद कुत्ता ना बना दिया जाऊं, कि जानवर के साथ भी मैं नहीं पसंद करता कि मैं मजाक करूं। फिर आप देखें कि अमर बिन शराबील कहते हैं कि अगर मैं किसी को बकरी के थनों से मुंह लगाकर दूध पीता हुआ देखूं तो मुझे ये डर होता है कि मैं भी कहीं ऐसे ना करने लगूं। जैसे अब बकरी के थनों से कोई दूध जो है वो पी रहा है तो ये एक हंसी वाली बात है ना, और मैं उसका मजाक उड़ाने लगूं तो फिर क्या है, मुझे ये डर लगता है कि कहीं मैं भी ऐसे ना करने लगूं। क्योंकि बाज़ औक़ात होता क्या है, आप किसी का मजाक उड़ाते हैं मसलन आपकी क्लास में एक बहन बैठी हुई है, और ये कहती है कि एक दफा जब जेलम के पास से मैं गुजरी तो पास कोई गांव था, और जरा पता है गांव के लोगों में इतनी जो है इल्म भी नहीं होता, तरक्की नहीं होती, तहजीब नहीं होती, तो गांव के लोग तो खूबसूरत भी और वो अच्छे घराने की अच्छी जगह रहने वाली, तो कहने लगी मैंने सोचा कि पता नहीं कैसे लोग हैं जो ऐसी जगह पे रहते हैं ना। तो कहती किस्मत की करनी देखें, कुछ अरसे बाद मेरी शादी हुई और मैं उसी इलाके के एक गांव में ब्याह करा गई। होता क्या है कि बाज औकात आपका तसव्वुर भी नहीं होता, लेकिन किस्मत तो किसी ने नहीं देखी ना, तो कभी किसी का मजाक ना उड़ाया जाए। इसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह ना कहती हैं कि एक दफा एक मुसीबत ज़दा शख्स जो था वो चंद औरतों के पास से गुजरा, तो वो इसका मजाक उड़ाने लगी। नतीजा क्या निकला कि एक औरत इसी बीमारी में मुब्तिला हो गई। अदबुल मुफरिद की ये रवायत है कि वो जो बीमारी जिस पर उस आदमी का मजाक उड़ाया जा रहा था, तो वो औरत जो थी उसको भी, उनमें से एक औरत को वो बीमारी लग गई। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि अल्लाह ताला दुनिया ही में जो है ना वो उसको जो है उसकी सजा दे देते हैं। फिर आप देखें कि ये जो मजाक उड़ाना है, तो इस सिलसिले में हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो और रवायात भी जो है वो मिलती हैं, तो इनसे फिर हमें अमल के लिए फिर उसूल क्या मिलता है कि हम अपनी अमली जिंदगी जो है उसको कैसे गुजारें। कि बाज लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि मसलन किसी को देखा कि खाना कैसे खा रहा है तो घर आके तबसरा करना शुरू कर दिया। आप किसी दावत पर गए हैं, आप मजाक में कहते हैं कि वो जो है वो जो दुल्हन थी वो तो ऐसे चल रही थी, या दूल्हा जो था वो इस तरह बैठा हुआ था, तो क्या करते हैं कि आप जो हैं उसके बारे में हंसी करते हैं और उसके बारे में जो है वो मजाक उड़ाते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अमल करने से जो है वो मना किया है। आपने इसको पसंद नहीं किया कि लोग जो हैं वो एक दूसरे की ऐबचीनी करें, उसका मजाक उड़ाएं, और हत्ता के अगर किसी को कोई हंसने हंसाने के लिए भी मजाक उड़ाए तो उससे भी मना किया। आपने फरमाया तू अपने भाई से मनाजरा ना कर, और इस और ना इससे मजाक कर, और ना ही वादा करके इसकी खिलाफ वर्जी कर। कि जब भी जो वादा कर लिया जाए तो फिर क्या करना चाहिए कि उस वादे को जो है वो पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर वादा पूरा नहीं किया या फिर ये कि जो है वो वैसे ही जो है जो लोग मजाक उड़ाना, बाज लोग जो हैं हमारे यहाँ रवाज है कि बाज लोग जो है वो ये किरदार अदा करते हैं। क्या करते हैं, जैसे बुल्ली यहाँ पे क्या किया जाता है कि बुल्ली बनाया जाता है। आप यहाँ के जो है वो पब्लिक स्कूलों में जाएं तो एक टर्म है जो बड़ी मशहूर है, बुल्ली। और उसमें क्या है कि किसी के लिबास पर, किसी की चाल पर, किसी के मोटा होने पर, किसी के एक्सेंट पर, किसी के बालों के स्टाइल पर, और अगर जैसे यहाँ पे अब एक फैशन है कि लड़के जो हैं वो अपनी पैंटें जरा नीची रखते हैं, तो हत्ता कि अमेरिका की एक स्टेट ने इस पर पाबंदी लगा दी। आप सोचें कि ये भी महसूस करते हैं कि ये गलत है, तो ढीली रखना, नीचे को रखना। अब जो वो फैशन नहीं करता ना, तो बाकी जो फैशन करने वाले हैं वो दूसरे लड़कों का इतना मजाक उड़ाते हैं कि फिर वो भी वो फैशन करना शुरू कर दे, उनको बुल्ली बनाना कहा जाता है, या लड़कियों से दोस्ती करना और जो नहीं करते तो उनके पीछे पड़ जाएं, या और भी बहुत सी बुराइयां। और हमारे यहाँ और मजाक कैसे उड़ाया जाता है, मसलन अगर कोई औरत जो है उसने पर्दा करना शुरू कर दिया, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब इतनी भी जरूरत नहीं है, आप सुन्नत का ख्याल रखती हैं, इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि इसकी भी क्या जरूरत है। तो मजाक जो लोग उड़ाते हैं मुख्तलिफ तरीके से उड़ाते हैं, और इसको जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और अल्लाह ताला ने भी मना किया। तो पहली बात हमें क्या पता चली कि मजाक नहीं उड़ाना, हत्ता के हंसी के तौर पर भी नहीं। मजाक मजाक है, किसी का दिल दुखाने का आपको किसी और को हक नहीं पहुंचता। ये आयतें आपको आसान लग रही है ना, ये आयतें बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बोलना बहुत आसान है, इन पर अमल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो चीज जो हराम है जिससे इस्लामी सोसाइटी में आग लग जाए, झगड़े हो जाए, लड़ाइयां हो जाए, और उसमें जो है फिर क्या हो जाता है कि उसमें जो है फिर कत्ल तक हो जाते हैं। आप देखें कि बाज औकात लड़कियां गुजरी कुछ लड़के रास्ते में बैठे तो उन्होंने मजाक उड़ा दिया। अब लड़की के घर वालों को पता चला तो फिर क्या हुआ, फिर कत्लो गारत हो गए, फिर झगड़े हो गए, फिर जो है खानदान के खानदान उसकी लपेट पे आ गए बस एक मजाक करने पे। मखलूत महफिलें हैं, उसमें मर्द किसी औरत से कह देता है कि भाभी आज तो आपने गजब ढा दिया है, क्या तैयारी की है, कैसी लग रही है भाभी आज आप, है ना। तो इस्लाम मखलूत महफिलों को पसंद ही नहीं करता, कुजा ये कि कोई गैर महरम किसी औरत के हुस्न पर, उसके लिबास पर, उसकी आंखों पर, उसकी चाल पर जो है वो कोई जुमले बोल दे, कोई जुमले कस दे ऐसे हंसी खेल में भी, और क्या जाने कि किसी के दिल के अंदर क्या है। तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, हो सकता है कि तुमसे बेहतर हो। दूसरी बात क्या कही, वला तलमिजू अनफुसकुम, और आपस में एक दूसरे पर जो है वो तान ना करो। और यहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है लम्ज का, और लम्ज जो है, लम्ज के मानी क्या होते हैं, लम्ज के मानी होते हैं कि किसी पर ऐब लगाना, चोटें कसना, थप्पड़ियां कसना, एतराज जड़ना, ऐब चीनी करना, और ये ऐब चीनी खुल्लम खुल्ला की जाए या फिर इशारों से। तो गोया के लाम मीम जे ये इसका रूट है, और ये लफ्ज जो है किसी शख्स के किसी फेल या हरकत में ऐब जुई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐब जुई अलल ऐलान की जाए या छुपकर की जाए। बाज़ुकात ये होता है कि ऐसे बात की जाती है कि डायरेक्ट नहीं होती, लेकिन तंजिया बात के दूसरा शख्स जो है वो महसूस करता है कि मुझे कहा जा रहा है ना, डायरेक्ट नाम नहीं लिया जाता। तो ऐसी तमाम हरकतें मुआशरती ताल्लुकात को जो है वो बिगाड़ कर रख देती हैं, और इस्लाम ने इनको जो है वो हराम करार दिया है। अच्छा, अब आप देखें कि इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने क्या बात कही, वला तलमिजु अनफुसकुम, क्या कहा कि आपस में जो है वो अपने ऊपर, अनफुसकुम यानी एक दूसरे पर तान ना करो से मुराद क्या है, वला तलमिजु अनफुसकुम, नफ्स है ना, अपने आप को कहते हैं। गोया के दूसरे पर जो तुम तान कर रहे हो वो तुम अपने आप पर तान कर रहे हो। समझ आई बात की, आप इसकी जरा जो है वो तफसील में जाएं कि आप आगे देखें कि अल्लाह ताला जो है ये भी तो कह सकते थे ना कि ला यलमिजु बादुकुम बादा, ये भी तो कह सकते थे ना। ये कहने की बजाय अल्लाह ताला ने कहा ला तलमिजु अनफुसकुम, जिससे ये बात निकलती है कि अगर कोई किसी पर फप्पी कसता है, किसी को जो है वो उसका उसके ऊपर एतराज जड़ता है, उस पर चोट लगाता है, उस पर ऐब जुई करता है, तो उस दूसरे पर नहीं करता, बादुकुम बादा नहीं है, बल्कि क्या है वो अपने आप पर करता है। किसी के खिलाफ जब बदगोई के लिए जबान खोलता है तो असल बात क्या है, तो अपने नफ्स को बदी का आशियाना बनाता है, क्योंकि दिल के अंदर जो जज्बात भरे हुए हैं बुराई का लावा खूब पककर फूट पड़ने के लिए तैयार हो चुका है। अब वो चोटे तो दूसरे को कर रहा है लेकिन वो अपने आप को चोट करने की दावत दे रहा है, क्योंकि दूसरे पर आप जब जो है उसको गड़े में डालने की कोशिश करेंगे खुद गड़े में गिरेंगे। दूसरे पे चोट करेंगे आप दूसरे को दावत देंगे कि आप पर भी वो हमला करे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे को जब अपनी जबान के तीरों का हदफ बनाया जाता है, फप्पियां कसी जाती हैं, तो नतीजा क्या निकलता है कि अपनी नेकियां उसको दे दी जाती हैं, इंसान जो है वो बुराइयां मोल ले लेता है। अच्छा, इस सिलसिले में जो है ये लान तान करना एक हदीस है जो बड़ी अहम है और हमें इस पर गौर करना चाहिए, और वो हदीस जो है वो क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमें हमारी किस तरह से रहनुमाई करते हैं, किस तरह से हमें जो है वो बताते हैं। मसलन अन आयशा कालत कुलतु लिन्नबी, हजरत आयशा रजी अल्लाह ना कहती है मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौके पर फरमाया हसबुका मिन सफियता कजा व कजा, कि सफिया का ये ऐप कि वो ऐसी और ऐसी है काफी है, तानी पसीरा यानी उसका कसीरा का मतलब क्या है कि छोटा कद। तो ये बहुत बड़ा ऐब है ना। हजरत आयशा रजी अल्लाह कहने लगी, फकाला लकद कुलती कलेमतन, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा तूने ऐसी बात कही, कलेमतन लव मुजीजा बिहल बाहरू लमजज, लव मुजीजा बिहल बाहरू, कि अगर ये समंदर में भी डाल दी जाए, यानी ऐसी तलख बात तुमने कही है, अगर ये समंदर में डाल दी जाए, लमजा जत हु, तो उसको भी वो तलख करके रख दे। फकाला लकद कुलती कलेमतन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने ऐसी बात जबान से निकाली है, लो मुजीजा बिहल बाहरू, कि अगर उसको समंदर के अंदर घोल दिया जाए, लमजा जत हु, तो उसको जो है वो पूरे समंदर को तलख करके रख दे। अब आप देखें कि अब हजरत आयशा रजी अल्लाह ने इस बात को छुपाया नहीं है, अब हदीस के तौर पर हमारी रहनुमाई है, और रसूल अल्लाह की बीवियां आपस में शौकन होने के बावजूद बहुत बड़ी मोहब्बत से रहती थी, लेकिन क्या है, इंसान है, गलती हो ही जाती है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से ऐसी गलती हुई, तो उन्होंने हजरत सफिया को रसूल अल्लाह की नजर में गिराने की कोशिश की, और कद का छोटा होना जो था उसको ऐब के तौर पर जाहिर किया। तो आपने इस पर इजहारे नाराजगी किया कि तुमने निहायत गलत बात कही है। और आप देख लीजिए कि सहाबा या सहाबियात को आप जिस बात पर टोक देते थे, तो दोबारा वो बात नहीं वो करते थे। अब हजरत आयशा से रसूल अल्लाह बहुत मोहब्बत करते थे, अब ये नहीं कि वो महबूब हैं और गलत बात कर रही हैं तो उनको कुछ कहा ही ना जाए। मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन इसलाह अपनी जगह है। तो मुनासिब अंदाज में आपने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को जो है वो टोक दिया है ना। तो इससे क्या बात पता चलती है कि दूसरे पर जो है वो लान तान नहीं करना चाहिए, अपने आप को अच्छा और बड़ा जो है वो नहीं समझना चाहिए। फिर इसी तरह जो है वो इंसान जब ये किसी पर किसी की ऐब जुई करता है, तो इसकी क्या वजह होती है, क्यों इंसान ऐब जुई करता है, क्यों किसी को बुरा भला कहता है? इसलिए कि वो ये समझता है कि या तो वो अपना मकाम अच्छा चाहता है, या उसके अंदर किब्र पाया जाता है जो शुरू में आपने पढ़ा, और या फिर वो ये चाहता है कि दूसरों की नजरों में उसको जो है वो एक इज्जत मिले, तो इसलिए वो दूसरे की जो है वो ऐब जुई करता है और दूसरे का जो है वो मजाक उड़ाता है। और इस सिलसिले में जो है ये बात भी हम सबको याद रखनी चाहिए कि जैसे किसी को जो है वो किसी के साथ लम्ज करना, तो इसकी भी अलामत क्या है, किब्र है। और किब्र क्या है, अल किब्रु बतरुल हक्की व गमतुन नास, तो किब्र जो है ये भी हराम है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान जो है वो किब्र करने वाले लोगों में जो है वो शामिल हो जाए। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी की दिल आजारी करना, और इसमें जो है क्या चीजें आती हैं कि किस तरह से इंसान जो है वो दूसरे की जो है वो दिल आजारी करता है। मसलन आप देखें कि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जब कोई शख्स किसी की दिल जोई करता है, तो उसको खुश करने की दिल जोई करता है, खुश करना चाहता है तो दिल जोई करता है, लेकिन जब उसके ऐब बताना चाहता है, तो दरअसल क्या चाहता है कि उसको उसकी किसी वजह से लड़ाई हो जाती है, या उसको वो शख्स जो है वो बुरा लगता है, तो क्या करता है कि फिर वो लम्ज के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है। और इस सिलसिले में आपको एक सूरत जो है वो आती होगी, वैलुल्ली कुल्ली हुमजतिन लुमजा है ना। तो उस सूरत के अंदर भी क्या बात हमारे सामने आती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि बड़ी खराबी है हर ऐसे शख्स के लिए जो ऐब टटोले और गीबत करता हो। तो हुमज और लुम्ज यानी दो बीमारियां जो हैं वो उसके अंदर पाई जाती हैं, हुम्स और लुम्स, और वो लोग हैं कि फिर उनके लिए तबाही जो है बता दी गई। हुम्स और लुम्स के बारे में मुफस्सरीन ये कहते हैं कि हुमाजा का मतलब है जो रू दर रू बुराई करे, और लुमाजा के मानी है जो पीठ पीछे करे, छुप कर किसी की ऐब जुई करे। और बाज कहते हैं कि हम्स कहते हैं आंखों और हाथों से इशारे करना, और लम्स कहते हैं कि जबान से जो है वो किसी की ऐब जुई करना। तो इस्लाम जो है वो इसको जो है वो क्या कहता है कि ये चीज जो है वो हराम है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और आप देख लें कि एक तरफ हमने मजाक का पढ़ा, दूसरी तरफ लम्ज का, अब तीसरी बात क्या है, वला तनाबजू बिल अलकाब, और ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद करो। अलकाब लकब की जमा है, एक होता है किसी का नाम और एक होता है किसी का लकब। नाम जरूरी नहीं कि वो उसकी सिफत हो, और लकब क्या होता है कि सिफत की वजह से वो उसका नाम बन जाता है, कि उसको वो लकब जो है वो दे दिया जाता है। तो इससे फिर मुराद क्या है, लकब से मुराद क्या है, कि किसी को ऐसा लकब न दिया जाए जिससे उसकी तहकीर होती हो या उसका कोई नक्श निकलता हो। तो याद रखें कि किसी को ऐसे नाम से नहीं पुकारना चाहिए, उसको ऐसा नाम या लकब नहीं देना चाहिए जो उसको नागवार हो, और वजह क्या है कि उसका ऐब या नक्श जो है उससे उसको मुलकब कर देना। मसलन अगर कोई मुसलमान हो गया है और मुसलमान होने के बाद उसको जो है उसके पिछले मजहब की बिना पर पुकारा जाए, जैसे किसी को यहूदी या नसरानी कह देना, जैसे एक दफा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत सफिया से कह दिया था कि ये तो यहूदन है, तो इस पर हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा बड़ी अफसरदा हुई और रसूल अल्लाह से शिकायत की, तो आपने उस वक्त आपकी बड़ी दिलजोई की और आपने कहा कि तुमने ये क्यों ना कह दिया कि मोहम्मद मेरे शौहर हैं, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम से अपना ताल्लुक और फिर हारून अलैहिस्सलाम से अपना ताल्लुक है ना, तो गोया कि मेरे बाप मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि उनकी उसमें से नस्ल से ना, तो गोया कि किसी की जात की वजह से या किसी के मजहब की वजह से किसी से कुछ कह देना कि जिससे जो है वो उसके लिए जो है वो एक ये पहलू निकलता हो कि वो बुरे हैं। मसलन बाज लोग जात की बिना पर बाज जातों को कमी कमीन की जात कहते हैं, तो उसको तो कहते हैं कि नहीं फलां जो है वो तो है ही लोहार है कुम्हार है, और बड़ी हकारत से उसका जिक्र करते हैं, तू तो फलां माँ का बेटा है, फलां माँ जिसकी माँ ऐसी थी, फलां खानदान का बेटा है, फलां खानदान जो कि खानदान अच्छा नहीं था। तो ये क्या है कि ये तनाजुब तनाबुज बिल अलकाब के अंदर ये चीजें आती हैं और इस्लाम जो है इससे मना करता है। तो लकब दो तरह के होते हैं, एक वो बुरे और एक जो अच्छे। तो जो है वो बुरे लकब क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया खानदान की बिना पर, या जैसे यहूदी या नसरानी इस तरह से, या किसी को गाली के तौर पर उसकी पुरानी बुराई उसको याद दिला दी जाए, या मसलन कोई जानी था और अलल ऐलान बताया, तो अब वो मुसलमान हो चुका है तौबा ताइब करके उसको कहा जाए कि जानी जरा इधर आ, या फिर ये कि चोर डाकू कह के किसी को पुकारना जबकि वो तौबा कर चुका हो। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी मुसलमान को फासिक या काफिर कहे वो दर हकीकत वो काफिर और फासिक ना हो, वो कह रहा है और वो है नहीं, तो खुद कहने वाला शख्स फासिक या काफिर हो जाएगा। ये बुखारी की रवायत है। और इसी तरह बाज़ुकात जो है क्या कहा जाता है कि किसी का ऐसा नाम रख दिया जाता है जो उसके तारुफ के लिए होता है, मुराद उसका नक्श बयान करना नहीं होता। जैसे दौरे नबी में एक सहाबी का नाम इसके लंबे हाथों की वजह से जुल यदैन पड़ गया, जुल यदैन, ऐसे ही अब्दुल्ला को जैसे अब्दुल्ला तवील या नबीना हकीम वगैरह कहने में कुछ हर्ज नहीं। समझ आ गई बात की? या जैसे अगर आप जो है वो हिस्ट्री का मताला करें तो इसमें हमें ऐसे इल्काबात मिलते हैं जैसे अस्मा और रजाल में, जैसे मुहद्दसीन ने कि नाम दोनों एक जैसे हैं, तो सुलेमान अल आमश यानी जिनकी आंखों में कुछ चुंदापन था, चुंदे सुलेमान, और इसी तरह जो है वो वासिल अल अहदब, अहदब हदब यानी कुबड़ेपन से है। तो ऐसे अलकाबात से याद किया है, मकसद उसका नक्श बयान करना नहीं बल्कि ये बताना है कि जैसे किसी की जो है वो पहचान हो जाए। मसलन आप दो लोगों का जिक्र कर रही हैं, एक का कद छोटा है एक का बड़ा है, अब आप ये बताना चाहती हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूं, तो आप फिर कह सकती हैं कि हाँ मैं उसकी बात कर रही हूं कि उसका कद छोटा है या उसका रंग ऐसा है। मकसद ये नहीं है कि आप उसका ऐब बता रही हैं, मकसद आपका क्या है कि आप जो है निशानदेही कर रही हैं मैं किसकी बात कर रही हूं। तो इस तरह बात जो है वो की जा सकती है। लेकिन बाज लोगों को नाम दे देते हैं किसी की खूबी की वजह से, जैसे सिद्दीक फारूक, ये भी लकब है उनका लेकिन ये उनकी सिफत है, या इसी तरह पहचान के लिए अबू हुरैरा, अबू तुराब, अबू तुराब जिसकी हजरत अली रजी अल्लाह हो, तो ऐसे जो है, ऐसे अगर किसी को पुकारा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखें कि बाज औकात बाज लोग जो है ये लम्ज भी बहुत करते हैं और तनाबुज भी बहुत करते हैं। तनाबुज है ना, मसलन शादी के मौके पे एक दूसरे को जो है वो क्या करना, फप्तियां कसना, लड़की वाले जो है वो लड़के के बारे में, कि दुल्हा दुल्हन के जो दुल्हा के जो वालदेन है उसके बारे में, और अजीब अजीब से गाने लोगों ने बना लिए हुए हैं। फिर क्या करते हैं, फिर लड़के वाले उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो लड़की और लड़के वाले, तो ये चीजें जायज नहीं है, ये हराम है। हंसी दिल लगी जिसमें दोनों बुरा ना महसूस करें, और लोग बहुत बुरा महसूस करते हैं लेकिन लोग इसका असर नहीं करते, और क्या करते हैं कि एक दूसरे का मजाक जो है वो उड़ाते रहते हैं। फिर फरमाया, बेसल इस्मुल फुसूकु बादल ईमानी, निहायत बुरा है। क्या है निहायत बुरा, बहुत बुरी बात है। क्या चीज, अल इस्मुल फुसूकु, फिस्क की जमा है फुसूक, फुसूक में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है। बादल ईमान, ईमान लाने के बाद, कि जब ईमान ले आए तो उसके बाद गुनाहों में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है। तो मोमिन के लिए सख्त शर्मिंदगी की बात है कि वो जो है वो क्या करे, कि है तो मोमिन और वो मजाक उड़ाए और वो लम्ज करे और वो तनाबुज जो है उससे काम ले, तो एक ईमान वाला शख्स मोमिन को ये चीज जो है वो जेब नहीं देती। और इस सिलसिले में आप ये बात भी याद रखें कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने सूरत कहफ की आयत 49 के बारे में क्या फरमाया, पहले कई दफा पढ़ चुकी हैं, जिसमें है कि या वैलतना मा ली हाजल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। उसकी तफसीर में उन्होंने कहा कि गुनाहे सगीरा ये है कि किसी मोमिन का मजाक उड़ाया जाए, और कबीरा ये है कि इस पर कहका लगाया जाए। उस आयत में क्या है कि इंसान हैरान होकर कहेगा, ये कैसी किताब है, कैसी अजीब किताब है कि इसने छोटा बड़ा कोई गुनाह भी छोड़ा नहीं, मगर उसको जो है वो उसका अहाता कर रखा है। इल्ला अहसाहा, तो सगीरा क्या है कि बस मजाक उड़ा रहे हैं, और कबीरा क्या है कि खूब कहके लगा रहे हैं। और आप देख लेंगे कई दफा ऐसा होता है कि आप बैठे हुए हैं, एक अजनबी शख्स आया, उसका लिबास का अंदाज मुख्तलिफ है, उसको रहन सहन का भी अंदाजा नहीं कि जिस जगह रह रहे हैं वहां के लोग कैसे लिबास पहनते हैं, किस तरह का उनका अंदाज है। अब लोग क्या करते हैं कि मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, और एक उड़ाता है, एक हंसता है, दूसरा हंसता है, सारे मिलकर पूरी जमात भरकर हंसना शुरू कर देते हैं। मसलन क्विज ही हो रहा है, आपस में इम्तहान हो रहा है, एक जवाब नहीं दे पा रहा और दूसरे मिलकर हंसना शुरू हो गए, एक हंसा दूसरा तीसरा, फिर सारे ही हंसना शुरू कर दिए, है ना। खेल रहे हैं आप, खेल रहे हैं, और कोई एक बीच में से गिर गया है। अब एक वो गिरा है, उसको चोट लगी है, पता नहीं उसको कोई नुकसान ना हो गया, बजाय उसको उठाया जाए, अब सारे मिलकर हंस रहे हैं, तो क्या है कि उसको, उसके दिल को बहुत अफसोस होता है कि मुझे तो तकलीफ पहुंची और ये मजाक कर रहे हैं, ये हंस रहे हैं। या ये कि किसी की शादी के मौके पर दुल्हन की सजावट पर हंसी शुरू हो गई कि लो जी दुल्हन तो बहुत ढूंढती थी, देखा फिर कैसी बनाकर लाई, एक यानी दुल्हन को देखा साथ ही इशारे करने शुरू कर दिए कि देखा फिर किससे शादी की है बेटे की। तो लोग ऐसा करते हैं, कभी लिबास पर, कभी रंग पर, कि इसका रंग जो है वो कितना स्याह रंग है, कितना काला रंग है। और इस सिलसिले में ये क्या बात हमें पता चलती है कि इस्लाम जो है वो इस चीज को जो है वो पसंद नहीं करता। सख्त आपने इससे जो है वो मना किया है, तो हमें क्या करना चाहिए। आजकल बाज ऐसे जो है वो शो आते हैं, उसमें क्या होती है, जिसमें दूसरे की नकल उतारी जाती है और मजाक उड़ाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, करोड़ी कहते हैं, और क्या कहते हैं, कॉमेडी शो वगैरह। तो उसको भी लोग बड़े शौक से देखते हैं कि किसी कौम चाइनीज का मजाक उड़ाया जा रहा है तो हिंदुस्तानियों का उड़ाया जा रहा है, और पाकिस्तानियों का उड़ाया जा रहा है, और बाकी सारे जो है वो क्या कर रहे हैं कि बस उसको जो है वो दिल लगाकर हंसी खेल के साथ जो है वो देख रहे हैं ना। तो ये चीज क्या है कि ये चीज जो है वो अल्लाह को सख्त नापसंद है। अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं करते कि उनका जो है वो मजाक उड़ाया जाए। अच्छा, इस सिलसिले में जो है वो अब आप देखें कि सहाबाए कराम की जिंदगी कैसी थी। उनकी जिंदगी ऐसी थी कि वो लोग जो थे पहले तो जाहिलियत ही से ताल्लुक रखते थे ना, और अब क्या था कि ईमान लाने के बाद अगर उनसे कोई गलती हो गई है, अगर उनसे कोई कमी बेशी हो गई है, تو اس پر ان کی اتنی سخت پکڑ ہوئی ہے کہ قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی ہیں، قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ اور فائدہ کیا نکلا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں، اور یہ نہ ہو کہ اصلاح کرنے کی بجائے جو ہے وہ برائیاں ہی برائیاں جو ہیں وہ اس کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. مثلا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے عملوں کو سنوارنا چاہیے، اور ہمیں یہ رسول اللہ کی مشہور دعا جو ہے نا اس کو بھی بہت مانگنا چاہیے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی عیون الناس کبیرا، کہ اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے، مجھ کو اپنی نگاہوں میں چھوٹا اور دوسروں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتا، پھر اپنی زبان سے دوسروں کو آر نہیں دلاتا. اور مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سب اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ بندے ہوئے ہیں، تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو نے غلط روی اختیار کر لی تو ہم بھی غلط روی اختیار کریں گے، اور پھر اس کا خمیازہ بھگتیں گے. مفتی محمد شفیع صاحب جو ہے گفتگو کے نقصان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسان جتنے کام یا کلام کرتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک مفید جس میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو، نمبر دو مضر جس میں دین یا دنیا کا کوئی نقصان ہو، اور نمبر تین نہ مفید اور نہ ہی مضر، نہ کوئی فائدہ اور نہ کوئی نقصان. تو یہ تیسری قسم کون سی ہے؟ لایعنی گفتگو. تو اس کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، اس کو پھر چھوڑ دینا چاہیے، اور یعنی دوسری قسم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں نقصان ہے دین کا اور دنیا کا، اور تیسری قسم جو ہے یہ بھی نہیں کر سکتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زبان وہ درندہ ہے کہ چھوڑ دو تو کاٹ کھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ کی حدیث پھر ہمارے سامنے کیا پیغام لے کر آتی ہیں کہ میں اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے، مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے، اور آپ اپنی زبان کو بار بار پکڑتے اور اس کو کھینچتے اور کہتے کہ افسوس کہ اس نے مجھے بہت جگہ پھنسایا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا، بہت سے الفاظ نعمتیں چھین لیتے ہیں، بہت سے الفاظ نعمتیں چھین لیتے ہیں. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، عقل مند کی زبان قلب کے پیچھے ہے، جب وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو پہلے دل کی طرف رجوع کرتا ہے، اگر وہ بات فائدے کی ہوتی ہے تو کہتا ہے ورنہ رک جاتا ہے، اور جاہل کا دل اس کی زبان کی نوک پر ہوتا ہے، اور وہ دل کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، جو زبان پر آتا ہے بک جاتا ہے. پھر کیا فرمایا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ توبہ نہ کریں، جو لوگ اپنی اصلاح نہ کریں، جو لوگ اپنی زبان کو پکڑ کر نہ کھینچیں، جو لوگ پھر اپنی زبان جو ہے اس کی حفاظت نہ کریں، فاولئک هم الظالمون، بس یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ ایک کافر مذاق اڑا سکتا ہے، ایک فاسق مذاق اڑا سکتا ہے، ایک کافر فاسق جو ہے وہ لمز حمز اور تنابز کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، کسی کو بھی کوئی نام دے دینا، لیکن ایک مومن جو ہے نا اس کے کردار کو یہ چیز زیب نہیں دیتی. آئیے اپنا محاسبہ کریں، آئیے اپنا جائزہ لیں، آئیے استغفار کریں، آئیے توبہ کریں کہ ہم نے کس کس کا مذاق اڑایا، ہم نے کس کس پر پھپتیاں کسی، ہم نے کس کس پر الزام لگائے، ہم نے کس کس کے برے نام رکھے. بعض لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی ہوشیار ہے، اور کہتے ہیں یہ بڑی اسکلفل ہے، بڑی فن والی ہے، وہ لوگوں کا نام رکھنے میں بڑے فن والے ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ استادوں کا بھی نام رکھ لیتے ہیں، یعنی دوست کلاس فیلو بھی آپس میں ایک دوسرے کا نام رکھتے ہیں، استادوں کا بھی نام رکھ دیتے ہیں، بزرگوں کا، بڑوں کا، قوموں کا، کہ بس نام سے ہی لوگ جو ہے शागिर्दों के दरमियान उस्तादों का एक नाम होता है, उस्ताद की किसी गुफ्तगू पर, उसके लिबास पर, उसके चलने पर, किसी भी वजह से उसका जो है वो नाम रख दिया, उसकी किसी कमजोरी पर। तो यही तो है जिसको हराम कहा जा रहा है। तो इसका ये नहीं मतलब कि उस्ताद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो आम का उड़ा सकते हैं, दोस्त का भी नहीं, मजाक का भी नहीं, किसी का भी नहीं। और ये तकब्बुर की बिना पर इंसान करता है, और ये चीज जो है वो क्या है, ये हराम है। फिर आप देखिए कि ये तीन ऐब गिनने के बाद फिर और अगला ऐब जो है वो कौन सा गिना गया? चौथा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। फिर ईमान लाने वालों को मुखातिब किया जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है, इज्तनेबू कसीरम मिनज़्ज़न, इज्तनाब करो, बचो किससे, कसीरन बहुत, मिनज़्ज़न गुमान करने से, तो बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो। यहां पे ये बात याद रखिएगा, ये नहीं कहा कि बिल्कुल गुमान ना करो, बल्कि कहा बहुत ज्यादा गुमान ना करो। क्यों? इसलिए कि बाज़ औक़ात जो है ऐसे हालात होते हैं कि गुमान करना पड़ता है। तो वो कौन से हालात होते हैं जिसमें गुमान करना पड़ता है? मसलन जो है वो अदालत में जो है वो मुकदमा दायर है और जज को फैसला करना है, तो अब जज क्या करता है कि वो जो है उसके पास जो है अब कोई मकूल वजूहात नहीं है, कोई यकीनी बात नहीं है, तो वो क्या करता है कि गुमान से एक फैसला करता है। जैसे आपने सूरत यूसुफ में पढ़ा कि कमीज आगे से फटी है कि पीछे से, पता तो नहीं था, लेकिन जो है एक गुमान से जो है वो उन्होंने फैसला कर दिया। तो बाज औकात ऐसे हालात पेश आ जाते हैं कि दूसरे को जो है वो क्या करना पड़ता है, गुमान करना पड़ता है। तो यहां पर जिस गुमान से मना किया जा रहा है वो बुरा गुमान है, सुए जन से मना किया जा रहा है, हुस्ने जन से नहीं मना किया जा रहा। सुए जन से मना किया जा रहा है। और अब आप देखें कि जो गुमान अल्लाह के यहां पसंदीदा है वो है हुस्ने जन, किसी से नेक गुमान करना। मसलन किसी ने वादा किया था कि आपको नोट्स दे देगी, उसने दिए नहीं, तो आप हुस्ने जन रखें। हो सकता है वो भूल गई हो सकता है जो है वो उसके मेहमान आगे हो सकता है उसको वक्त ना मिला हो सकता है उसने फोन किया हो, मेरा ही फोन मसरूफ रहा हो, कोई भी वजह हो सकती है हुस्ने जन करना। तो नेक गुमान करना, और नेक गुमान जो है इसको अपनी आदत बनाना चाहिए। और किसी बुजुर्ग का कॉल है कि बुरा गुमान करने से पहले 70 तावीलें करो, बुरा गुमान करने से पहले 70 टाइम जो है ना अच्छी बातें सोचो कि उसने अगर ये काम नहीं किया तो फिर उसकी ये वजह हो सकती है, उसने सारों को दावत पे बुलाया, मुझे ही नहीं बुलाया, हो सकता है भूल गई हो, है ना, और उसने सबको मिठाई भेजी अपने बेटा पैदा होने की और पोता पैदा होने की, मुझे ही नहीं भेजी, हो सकता है मिठाई कम पड़ गई हो, अभी उस थोड़ी बुलाए हो, फिर और आए तो फिर मुझे भी मिल जाए, कोई बात नहीं, अगर मिठाई नहीं आई, कोई भी वजह हो सकती है ना। और भी बहुत सी बात हो सकती है, किसी ने खत लिखना था आपको खत नहीं लिखा, तो क्या है कि उस वक्त जो है बुरा गुमान जो है वो ना किया जाए। तो जन के मानी क्या होते हैं, गुमान करना। तो जो पसंदीदा है वो अच्छा गुमान करना है, और जो बुरे गुमान है, इन्ना बादा जन, बाज जन जो है इस मुन गुना है, इससे मना किया जा रहा है। और इस्म की तारीफ क्या है, हदीस से क्या पता चलती है, मा हाका फी नफ्सिक, जो तेरे दिल को खटके, यानी गुनाह ये है कि वो गुनाह जो कि तेरे दिल में महसूस हो कि तूने जो है ये गलत बात की है, तो उसको जो है उसे मना किया जाता है। और फिर हमें बदगुमानी के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात मिलती हैं उससे क्या बात पता चलती है? है कहीं कि हम जो है अगर हमारे पास कोई भी बात पता नहीं चल रही तो हम बदगुमानी कर ले? नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न्नी फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, तुम ज़न से एतराज करो, बचो, इसलिए कि ज़न बदतरीन झूठी बात है। ज़न के मानी क्या है कि आप अपने भाई के बारे में जो है वो बुरा गुमान करते हैं, फिर गुमान के बाद क्या करते हैं कि फिर आप वो बुरी बात कर लेते हैं। तो बदज़नी ऐसी बीमारी है, इतनी बुरी है कि ये बदतरीन झूठी बात है और बाहमी ताल्लुकात को घुन की तरह ये खा जाती है। एक दफा आप इतकाफ में बैठे हुए थे, रात को अजवाजे मुतारात में से कोई आपसे मिलने आई, आप इनको वापस पहुंचाने चले आए तो इतफाकन रास्ते में दो अंसारी सहाबी मिल गए। वो आपको औरत के साथ देखकर अपनी आमद को बेमौका समझकर वापस जाने लगे। आपने आवाज दी, फरमाया मेरी ये फलां बीवी है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के साथ बदगुमानी करनी होती तो क्या आपके साथ करते? आपने फरमाया, शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है। इससे क्या बात पता चलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बदगुमानी का मौका नहीं पैदा होने दिया। बाज़ुकात ऐसा होता है कि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि बदगुमानी जो है वो दिलों में आने लगती है। तो बातों को क्लियर भी करना चाहिए, बहुत जरूरी है कि बातों को क्लियर करना किया जाए ताकि लोगों के दिलों में आपस में जो है वो बदगुमानी ना पैदा हो जाए। तो अब जो है वो बदगुमानी जो दर हकीकत गुनाह है, उससे हमें बचना चाहिए, अपना जायजा लेना चाहिए। और औरतों के अंदर शायद ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है, फारिग होती हैं और जो है वो बदगुमानी करती रहती हैं। तो क्या करना चाहिए कि अपने आप को बदगुमानी से बचाना चाहिए। और अगर हमें कभी कोई ऐसी शिकायत पैदा हो भी जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है वो दूसरे से उसको क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो गुमान की कितनी किस्में हमारे सामने आई। नंबर एक, वो जो इस्लाम में पसंदीदा है, हुस्ने ज़न करना, है ना। जैसे जैसे वाकया इफ के बारे में सूरत नूर में आयतें नाजिल हो गई कि जब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर इल्जाम लगा था तो मोमिन मर्दों ने और मोमिन औरतों ने नेक गुमान क्यों ना किया, क्यों ना कह दिया हाजा इफ्कुम मुबीन। दूसरी किस्म का गुमान वो है जो करना मजबूरी बन जाता है, जैसे अदालत में फैसला करने के लिए। तीसरी किस्म का गुमान जो है तो बदगुमानी लेकिन जो है क्या होता है कि है तो बदगुमानी और फिर इंसान जो है जैसे कोई शख्स है या कोई लोग हैं तो उनकी सीरत और किरदार में सरीहन ऐसी वाज़ेह अलामतें नजर आती हैं कि इंसान बदगुमानी करनी शुरू कर देता है। तो किसी के बारे में अगर सरीहन ऐसी कोई बात नजर आ रही हो, मसलन रिश्ता ही करना है और सरीहन नजर आ रहा है कि इनके घर हराम कमाई है, ये लोग ठीक नहीं है या मर्द का किरदार ठीक नहीं है, तो फिर ये नहीं करना चाहिए कि नहीं अब मैं हुस्ने ज़न से काम ले रहे हैं। तो फिर जो है ये भी एक है तो बदगुमानी की किस्म लेकिन जायज नोयत की है। और चौथी किस्म का गुमान दर हकीकत गुनाह है कि बिला सबब बदगुमानी करना और दूसरे के बारे में राय कायम करना, खा हालात जो हैं वो बता रहे हैं कि वो नेक हैं तो उसके बारे में बुरा भला सोचना। मसलन आप गई कहीं महफिल में और आपका जूता गायब हो गया, कोई पहन के चला गया, आप सोच रहे हैं कि नहीं उसने चुराने की उसकी नीयत थी, उसने मेरा जूता चुरा लिया, तो भूले से भी तो वो जूता पहन सकता है ना। आपकी जगह आपकी चीज जो है कोई अपनी चीज समझ कर रख ले तो ये क्या है।